दोनों पेरेंट्स के बीच सब बातें फाइनल हो गई तो वृंदा जी ने अपनी बहू को देखने की इच्छा जाहिर की। अनुपमा जी उन्हें बुलाने चली गईं। कुछ देर बाद सृष्टि, आरवी और अनुपमा जी के साथ रश्मि धीमे कदमों से वहां आईं। गुलाबी रेशमी साड़ी, लाइट मेकअप, खुले बाल, हया से गुलाबी गाल और शर्म से झुकी पलकें। आज रश्मि का एक अलग ही रूप रेहान के सामने था और वो धड़कते दिल के साथ एकटक उसी को देखे जा रहा था। पर शान का सारा ध्यान अब भी अपने फ़ोन पर था। ऐसा लग रहा था जैसे उसको इन सब में कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। सृष्टि ने अंशु को अपनी गोद में उठाया हुआ था। जैसे ही उसकी नज़र अपने डैडी पर पड़ी, वो उनके पास जाने को मचल उठी। सृष्टि ने जैसे ही उसको नीचे उतारा, अंशु डैडी डैडी पुकारते हुए अपने नन्हे कदमों से उसके तरफ दौड़ गई। उसकी आवाज़ जैसे ही शान के कानों में पड़ी, उसने अपनी निगाहें उठाईं और सामने से भागते चली आ रही अंशु पर नज़र पड़ते ही उसके लबों पर मुस्कान फैल गई। उसने अपना फ़ोन पॉकेट में डाला और अपनी बाहों को फैला दिया। अंशु जैसे ही उसके पास आई, उसने उसको अपनी बाहों में थामते हुए उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और उसको लाड करने लगा। सबकी निगाहें उन्हीं दोनों पर ठहर गईं। सबके बीच जो एकदम कोल्ड लुक चेहरे पर लिए वहां बैठा था, अब उसका एक अलग ही रूप नज़र आ रहा था और ये अंशु के लिए उसके प्यार को जाहिर कर रहा था। आरवी ने दोनों को देखा तो उसके लबों पर भी हल्की सी मुस्कान फैल गई। ये पल हमेशा से उसको सुकून देता था। रजनी जी भी उठकर रश्मि के पास चली आईं। सबके पास आकर रश्मि ने हाथ जोड़कर दोनों बड़ों को नमस्ते किया तो दोनों ही मुस्कुरा उठे। वृंदा जी उठकर उसके पास चली आईं और प्यार से उसके गाल को छूकर मुस्कुराकर बोली, हमें अपने बेटे की पसंद पर नाज है। उनका ये कहना ही ये बताने के लिए काफ़ी था कि उन्हें रश्मि पसंद आ चुकी है। उन्होंने रश्मि को अपने पास बिठा लिया, फिर रजनी जी को देखकर बोली, हमें तो हमारी बहू बेहद पसंद आई और हम जल्दी से जल्दी उन्हें अपने परिवार में शामिल करना चाहते हैं। आप बता दीजिए कि आपका क्या फ़ैसला है। उनकी बात से सहमति जताते हुए अभिजीत जी ने आगे कहा, हमारी तो इच्छा है कि हम आज ही शगुन देकर आपकी बेटी को अपनी बहू बना लें, फिर जाने से पहले दोनों की सगाई करवा देंगे और कुछ महीनों बाद शादी। अब आप भी बता दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। हमें तो आपकी बेटी पसंद आई, अगर आपको भी ये रिश्ता मंजूर हो तो अभी ही इस रिश्ते को पक्का करके रिश्तेदारी के बंधन में बन जाते हैं। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की और अब उनकी इच्छा जानने का इंतज़ार करने लगे। आलोक जी और रजनी जी ने आंखों ही आंखों में कुछ बात की। उसके बाद आलोक जी ने अभिजीत जी को देखते हुए कहा, हमारी बेटी को इतना अच्छा समझदार जीवन साथी और इतना प्यार करने वाला ससुराल मिले, ये हमारे लिए खुशी की बात है। हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। फिर दोनों बच्चे एक दूसरे के पसंद करते हैं तो हमें उन्हें जल्दी ही शादी के बंधन में बांध देना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। हम पंडित जी को बुलवा लेते हैं, बच्चों की कुंडलियाँ दिखवाकर जल्दी ही कोई सगाई का मुहूर्त निकलवा लेते हैं और शादी के लिए भी दिन दिखवा लेंगे। अभिजीत जी उनकी बातों से सहमत थे और वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। आलोक जी ने पंडित जी को फ़ोन करके जल्दी आने को कहा। इतने में दोनों पेरेंट्स ने लड़के लड़की को शगुन देकर रिश्ता पक्का कर दिया। दोनों ने सब बड़ों का आशीर्वाद लिया। शान, आरवी और सृष्टि ने उन्हें मुबारकबाद दी। रश्मि आज बहुत खुश थी और आरवी उसको खुश देखकर मुस्कुरा रही थी। कुछ देर में पंडित जी भी आ गए। दोनों की कुंडलियाँ मिलवाई गई और एक हफ्ते बाद का सगाई का मुहूर्त निकाला गया। शादी की डेट 3 महीने बाद की निकली। दोनों परिवारों ने सहमति जाहिर की। डिनर का इंतजाम यही हुआ था तो सबने हंसी खुशी साथ में डिनर किया। उसके बाद रेहान, वृंदा जी, अभिजीत जी और सृष्टि के साथ वहां से निकल गया। आरवी ने भी रजनी जी को बताया कि पिछले कई दिनों से यहीं थी, कल ही वापस गई थी इसलिए आज नहीं रुक सकेगी, पर कभी और आ जाएगी, तो उन्होंने भी उसको जाने की इजाज़त दे दी। वो भी शान, अनुपमा जी और अंशु के साथ वहां से निकल गई। आलोक जी और रजनी जी ने रश्मि को कमरे में भेज दिया और खुद भी खुशी खुशी अपने अपने काम में लग गई। शान ने अनुपमा जी को उनके घर पर छोड़ा और गाड़ी अपने घर के तरफ दौड़ा दी। दिन भर की थकी हारी अंशु आरवी की गोद में ही सो चुकी थी और इस वक्त गाड़ी में गहरी खामोशी छाई हुई थी। आरवी ने रश्मि के घर पर भी शान से एक बार बात करना तो दूर उसके तरफ देखा तक नहीं था और अब भी वो खामोशी से विंडो के बाहर देख रही थी। दोनों के मन में विचारों का झंझावात उठ रहा था। बहुत कुछ कहना चाहते थे पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या और कैसे कहें। मन में भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे। आरवी के दिमाग में शान की सुबह की और रश्मि के घर पर कही बातें घूम रही थी और शान आरवी की सुबह की बातों और अभी के रूखे व्यवहार से बेचैन था। यूं ही उनके दरमियान खामोशी पसरी रही और गाड़ी घर के आकर रुकी। गार्ड ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया और इस बड़े से गलियारे को पार करते हुए गाड़ी अंदर चली गई। अंदर वाले गेट पर गाड़ी रुकते ही आरवी अंशु को अपनी गोद में उठाए गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई। उन्हें कुछ देर हो गई थी तो यहाँ भी सब खाना खाकर सोने जा चुके थे। आरवी भी खामोशी से अपने कमरे में चली आई। उसने अंशु को बेड के बीच में अच्छे से सुलाया, फिर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। शान कुछ देर बाद गाड़ी पार करके ऊपर आया तो रूम खाली देख समझ गया कि आरवी बाथरूम में है। उसने सोच लिया था कि उससे बात करके ही रहेगा तो उसने अपने कपड़े लिए और दूसरे कमरे में चला आया। कुछ देर बाद फ्रेश होकर और चेंज करके वापस कमरे में आया, तब आरवी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने हाथों में मॉइस्चराइजर लगा रही थी और किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। शान ने एक नज़र उसको देखा, फिर बाथरूम में जाकर धोने वाले कपड़े टब में डाल दिए और वापस बाहर चला आया। वो कुछ सोचकर जाकर आरवी के पीछे खड़ा हो गया और उसके उदास चेहरे को देखते हुए बड़े प्यार से बोला, आरवी। उसकी आवाज़ कान में पड़ते ही आरवी होश में लौट आई। उसने निगाहें उठाकर देखा तो मिरर में उसको अपने ठीक पीछे खड़े शान की छवि नजर आ गई। इसके साथ ही उसके चेहरे पर नाराजगी के भाव उभर आए और वो टेबल से उठकर खड़ी हो गई। वो जैसे ही मुड़ने को हुई, शान ने फिर से उसके सामने आते हुए कहा, आरवी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आरवी अब उसके ठीक सामने खड़ी हो गई और उसकी निगाहों से निगाहें मिलाते हुए बोली, पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और ना ही आपकी किसी बात को सुनने में मुझे कोई दिलचस्पी है, तो रास्ता छोड़िए मेरा, थक गई हूँ तो मुझे सोना है। पहले मेरी बात सुन लो। शान कह ही रहा था कि आरवी उसकी बात को अनसुना करते हुए उसके साइड से निकलकर जाने लगी। ये देख शान कहते कहते चुप हो गया और उसने झट से मुड़कर जाती हुई आरवी की कलाई पकड़कर उसको अपनी तरफ खींच लिया। आरवी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगा, इसलिए उसकी यूं अचानक खींचने से वो खुद को संभाल नहीं सकी और उसकी तरफ खींची चली आई। उसका शरीर शान के शरीर से जा टकराया। उसने तुरंत दूरी बनाने के लिए उसके सीने पर अपनी हथेलियों को टिका दिया और उससे दूर हटने की कोशिश करने लगी, पर शान ने फुर्ती से उसकी कमर को अपनी बाहों में जकड़ लिया, जिससे आरवी इससे दूर न जा सकी। आरवी ने खींचते हुए उसको देखा और गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी है, छोड़िए मुझे, मैंने कहा ना कि मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, फिर यूं ज़बरदस्ती मुझे पकड़ने का क्या मतलब हुआ, छोड़िए मुझे वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जहां आरवी गुस्से से भड़की हुई थी, वहीं शान एकदम शांत लग रहा था। आरवी अब भी उसे छूटने के लिए छटपटा रही थी और साथ में उसको गुस्से से घूरे भी जा रही थी।
शान कुछ पल उसको यूं कोशिश करते खामोशी से देखता रहा, फिर हमेशा वाले रौबदार आवाज में बोला, बेकार में कोशिश करके क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो, तुम मेरी पकड़ से तब तक आज़ाद नहीं हो सकती जब तक मैं न चाहूँ। आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, यूं बिना मेरी इजाज़त के आप मुझे छू नहीं सकते। आरवी गुस्से से उस पर बरसी। उसकी बात सुनकर शान ने एकदम शांत लहजे में कहा, बदतमीजी नहीं है ये, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। सुबह ही तुमने कहा था तुमने मुझे खुद पर शादी के वक्त ही सारे अधिकार दे दिए, इसका मतलब मुझे हक है तुम्हें छूने का। खैर, मुझे उन अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करना है, मैं बस अपनी पत्नी से बात करना चाहता हूँ। वो रूठी है तो उसको मनाना मेरा फ़र्ज़ है और मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है और तुम्हें खामोशी से मेरी बात सुननी होगी। अगर तुम ज़्यादा कसमसाई या बीच में तुमने कुछ भी कहा तो तुम्हें शांत करने और खामोश करने के तरीके मुझे बहुत अच्छे से पता है। शान काफ़ी गंभीर लग रहा था। पहले तो आरवी उसको गुस्से से घूरती रही, फिर जैसे ही शान चुप हुआ उसने कुछ कहने को मुँह खोला, पर वो एक शब्द भी कह पाती उससे पहले ही शान बोल पड़ा, टू बी कंटिन्यूड।